पतित पावन राम रघुपति राम रघुपति राघव राम पतित पावन राम जानकी जीवन राम सीता गाइए गाइए सीता मोहन राम जानकी जीवन राम पतित पावन राम राम जानकी जीवन पतित पावन सीता मोहन राम जानकी जीवन सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी दशरथ नंदन पतित पावन राम अयोध्यावासी दशरथ नंदन पतित पावन राम 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 पतित पावन राम मोहन जानकी जीवन जानकी वल्लभ राम जानकी जीवन जानकी वल्लभ राम रघुपति राघव राम पतित पावन राम रघुपति रघुपति राघव रचित पावन सीता मोहन राम रघुपति राघव पतित पावन सीता मोहन राम रघुपति राघव राम पतित पावन राम 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 सीता मोहन राम सीता मोहन जानकी जीवन पतित पावन राम 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 रघुपति राघव राम गाइए गाइए प्रसाद है के बाद राम 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 पतित पावन राम सीताराम 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 जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई प्रभुपाद 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 नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्रेमानंदे जय ओम नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद परिवारिकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद परिवारिकाचार्य अष्टोत्तर सत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की राम नवमी महामहोत्सव की राम आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की अयोध्यापुरी धाम की धर्म हरि नाम संकीर्तन की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही मंगलमय दिवस भगवान श्री राम का आविर्भाव तिथि रामनवमी महामहोत्सव। वैसे तो इस समय हमारा कोई प्रवचन नहीं था लेकिन दोनों समय हमको बिठा दिया गया। प्रातः काल परम पूज्य राधा कृष्ण प्रभु का प्रवचन था तो हमको कहा वो नहीं आ रहे हैं आप बैठिए। तो प्रातः काल बैठे फिर कमल लोचन प्रभु का प्रवचन था अभी, तो कमल लोचन प्रभु बोले नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम जाए बैठो। तो जबरदस्ती बिठाया गया है, तुम तो बिल्कुल संशय में पड़ गए कि क्या, क्योंकि सुबह कथा सुनाया फिर अभी सुनाना जाए। फिर भी भगवान की कथाएं इतनी अनंत हैं, हैं भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि जो भी इन कथाओं को जब भी हम सुनते हैं तो वास्तव में उसमें नया नया लगता है, इसको रस कहते हैं। इस संसार की जो कथाएं हैं वे अखबार आता है सुबह और दो घंटे बाद वो बासी हो जाता है, क्योंकि उसमें संसार की कथाएं होती हैं। तो आपको कोई सामने लाकर कल का अखबार दे तो फेंक देते हैं, अरे आज का लाओ, और आज का भी शाम को दे तो फेंक देते हैं, वो बासी हो जाता है। लेकिन भगवान की जो कथाएं हैं, आप देखिए भगवान राम की कथाएं कितने वर्षों से चल रही हैं, कई युग बीत गए लेकिन आज भी हमारी रुचि इन कथाओं के प्रति इतना का इतना है। ये दूसरी बात है कि हमारे पाप के जीव के पाप के कारण या किसी वैष्णव साधु की कृपा न होने के कारण इसको कथा में रुचि नहीं होता है, ये दूसरी बात है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाएं, हैं 56 प्रकार के, लेकिन अगर किसी को बुखार चढ़ा हुआ है तो उसमें कोई रुचि नहीं होता उसको। बुखार वाले व्यक्ति के सामने कई प्रकार के व्यंजन रख दो तो नहीं 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 खाना है। इसी प्रकार जिनको माया रूपी बुखार चढ़ा हुआ है उनके सामने दिव्य कथाएं भी उनको प्रिय नहीं लगती, लेकिन जिनको माया का या पाप रूपी बुखार जिनके पास चढ़ा हुआ है उनको, बाकी किसको भगवान की कथा में रुचि नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान की कथाएं भव औषध छोत्र मनोभिरामात, हैं भगवान की कथा भव औषधि छोत्र मनोभिरामात, जो संसार के भव बंधन में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनको भव बंधन का रोग लगा है, ऐसे जीव के लिए यह उपयुक्त औषधि है। क्या? भगवान की कथा। और वो भी कथा कैसी है? मनोभिरामा, मन को आनंद प्रदान करने वाली है। भगवान की कथाएं जो हैं वास्तव में मन को आनंद प्रदान करने वाली कथाएं हैं। भगवान की कथाएं भगवान को भी आकर्षित करती हैं। ऐसी भगवान की कथा में किसका रुचि नहीं होता? दो ही व्यक्तियों का रुचि नहीं हो सकता है? एक तो जो अपने ही आत्मा का हत्यारा है, अपने ही आत्मा का जो अहित करने वाला है, हित नहीं सोचता है, ऐसा व्यक्ति, और दूसरा कसाई। ऐसे दो व्यक्तियों को ही भगवान की कथा में रुचि नहीं हो सकता। बाकी इस संसार में ऐसा कौन जीव है जिनको भगवान की कथा में रुचि नहीं? और उसमें भी भगवान राम की कथाएं, भगवान राम का चरित्र इतना उज्जवल है, हैं? एक विदेशी बहुत बड़ा कोई विद्वान व्यक्ति था, विदेशी साहित्यकार है, उसने कहा कि भगवान राम की जो कथाएं हैं ये वास्तव में समाज के हित के लिए हैं। जितना भगवान राम का चरित्र और राम की कथाएं इस जगत का हित कर सकती हैं ऐसा और कोई नहीं कर सकता। भगवान राम की कथाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं। आज भी समाज में भगवान राम की कथाओं को अगर स्थान दिया जाए लोग अपने जीवन में स्थान, तो आज भी ये पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। प्रभुपाद जी नवम स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि सीता जैसी पत्नी और भगवान राम जैसा पति अगर हो तो उसका घर आज भी स्वर्ग के समान है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा, भगवान राम जो सीता जी जिनके लिए सब कुछ त्याग कर दिया है, वचन जो केकई ने जो मांगा था वो राम के लिए वनवास मांगा था, सीता के लिए नहीं मांगा था, लेकिन प्रभु राम की सेवा के लिए सीता जी ने जो त्याग किया, अगर अपने पति की सेवा के लिए स्त्री में इतना त्याग हो तो उसके घर में क्या कमी रह सकती है। तो ऐसे सीता जी ने प्रभु राम की सेवा के लिए राजमहल का सुख को त्याग कर दिया। तो ऐसी पत्नी के लिए भगवान राम ने भी, जब सीता जी का हरण हो गया तो भगवान चाहते तो अनेक सीताएं प्रकट कर सकते थे, लेकिन वहां पर भगवान ने एक पति का कर्तव्य है, ऐसी पत्नी जो सती हो उसके लिए पति को कैसा होना चाहिए। हमारे शास्त्र हैं जो दोनों के लिए शिक्षाएं प्रदान करते हैं। जिस सीता जी ने भगवान राम के लिए इतने सुख का त्याग किया, उन प्रभु ने भी सीता जी को वापस प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध मोल लिया, युद्ध करके भी सीता जी को वापस लाया। तो ऐसा पति और भगवान राम जो थे एक पत्नी में संतुष्ट रहना, ये शिक्षा दिया समाज को। जब सूर्पणखा भगवान राम के पास आई थी तो भगवान ने कहा कि मैं तो इस समय एक नारी व्रतधारी हूं। तो भगवान राम के जीवन से जो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, अगर ये शिक्षाएं आज भी समाज में कोई पालन करे और कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं, तो आज भी ये धरती स्वर्ग बन सकती है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि विडंबना इस बात की है कि लोग राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम को नहीं चाहते, ये दुख की बात है। राम राज्य का नाम ले तो वो सभी लोग हाँ राम राज्य चाहिए, और राम राम नहीं चाहिए, तो राम के बिना राम राज्य कैसे आ सकता है। आप जानते हैं राम का राज्य कैसा था, हम खाली राम राज्य, लेकिन राम के राज्य के विषय में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवतम के नव स्कंद में राम राज्य का वर्णन किया गया है। नादि व्याधि जरा ग्लानि भय शोक कल्मश मृत्यु च अनिच्छादि नासिद राम राज्य न दोक्षजे। भगवान राम का जो राज्य था, नादि व्याधि जरा ग्लानि, कोई शारीरिक रोग नहीं थे राम के राज्य में। शारीरिक रोग की बात छोड़िए, मानसिक उपाधियां भी नहीं थी। न्यादि व्याधि, आदि और व्याधि, आदि और व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग और मानसिक रोग। मानसिक रोग से मानसिक चिंताएं, टेंशन। आज के राज्य में किसकी मानसिक चिंता, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक चिंता नहीं है। लेकिन राम के राज्य में शारीरिक रोग भी थे नहीं थे और मानसिक चिंताएं भी नहीं, न्यादि व्याधि। जरा बुढ़ापा नहीं था, जरा ग्लानि, कोई लोगों को कोई शिकायत नहीं थी, कोई शोक नहीं था, भय नहीं था, भय शोक कलमश, और सब लोग पाप से रहित थे। और ऐसा कहा गया है कि मृत्यु च अनिच्छादि नासीत, अगर कोई चाहता कि हमको मृत्यु ना आए तो मृत्यु भी नहीं आता था। है? ऐसा हो सकता है कोई ना चाहे कि हमें मृत्यु ना आए तो ना। कलयुग में ऐसा फैसिलिटी दिया जाए तो कोई मरने को तैयार नहीं होगा, है? लेकिन महाराज दशरथ मरने को तैयार हो गए। हम कहते हैं अगर नहीं चाहे तो मृत्यु महाराज दशरथ को क्यों आया, महाराज दशरथ तो चाहते थे, है? अति दुख में थे, अति दुखा, जैसे श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, जब भगवान कृष्ण काले बंधन में आ गए तो उस समय जब ब्रजवासियों ने और माता यशोदा और गोपियों ने देखा तो वहां सुखदेव गोस्वामी कहते अति दुखा, वे अति दुख में हो गई। अति दुखा का अर्थ अब इससे मर जाना अच्छा। इतनी माता यशोदा, नंद महाराज, गोपियां, गोप इतने दुख में आ गए कृष्ण को संकट में देखकर, ना कालिया के बंधन में देखकर, हैं? भगवान भी ऐसा लीला कर रहे थे, कालिया ने लपेट लिया और वो मूर्छा जैसे खाकर पड़े, तो सब दुख रो रहे थे और अपने शरीर को छोड़ देना चाहते थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा अति दुखा। तो हमारे आचार्य गण कहते अति दुखा का क्या अर्थ है, अति दुखा का अर्थ यह है कि अब वो भगवान के वियोग में, इससे अच्छा है मर जाना, अब दुख सहन नहीं होता है। तो महाराज दशरथ का भी ऐसा स्थिति था, अति दुख में थे कि अब तो शरीर छोड़ देना अच्छा, राम का वियोग अब सहन नहीं होता है। क्या हमको ऐसा कभी होता है? कोई प्रश्न ही नहीं ऐसा होने का। हमको भला ऐसा क्यों होने लगे, हम क्या पागल हो गए? लेकिन महाराज दशरथ राम के वियोग में से, हालांकि इसके पीछे एक इतिहास भी था कि एक समय की घटना थी कि मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार जो अपने माता पिताओं को यात्रा कराने के लिए, जो उनके दोनों माता पिता अंध थे, उनको यात्रा कराने के लिए ऐसा कावड़ बनाया गया था और कावड़ के दोनों पल्लू में अपने माता पिताओं को बिठाया था और माता पिता को बिठाकर वो यात्रा कराने के लिए ले जाते थे। कैसे पुत्र होते थे पूर्व जन्म में। आजकल हम देखते हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं तो कहते हैं वृंदावन आना है तो कहते हैं हाँ हमारे मम्मी पापा को ले जाओ और उनका देखभाल आप करना, पैसे दे देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि बेटे साथ में नहीं आते हैं। कई हमारे साथ भक्त होते हैं, वृद्ध वृद्ध लोग होते हैं, अगर भक्त हैं तो वो भक्त आते हैं माता पिता के साथ यात्रा कराने के लिए। भक्तों को कई देखा हमने, एक भक्त देखे हमारे मुकुंद प्रभु, अपने माता पिता को सेवा करा रहे थे, वो भक्त हैं इसलिए इतनी सेवा करते थे और यात्रा करा रहे थे। वो वृद्ध थे तो उनको गाड़ी में बिठाना, ले जाना या स्नान कराना, वो इसलिए करा रहे थे कि वो भक्त हैं। लेकिन हमने किसी अभक्त के माता पिता को नहीं देखा कि लड़का साथ में और माता पिता को यात्रा करा रहा है। लेकिन ये जो श्रवण था, ये अपने कंधे पर कावड़ को उठाकर अपने माता पिता को यात्रा करा रहा था। यात्रा कराते कराते एक स्थान पर रखा और उनके माता पिता को प्यास लगा तो उन कावड़ को, माता पिता को एक स्थान पर बिठाकर श्रवण कुमार जल ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास गए। तो ऐसा बताया गया कि रात्रि का समय था और महाराज दशरथ उस समय आखेट के लिए जंगल में गए हुए थे और महाराज दशरथ युद्ध कला में इतने निपुण थे कि शब्द भेदी बाण छोड़ना जाते थे। शब्द भेदी बाण, शब्द के ऊपर बाण चलाया जाता था, अगर शब्द सुन लिया तो उस बाण चलाते थे और उस शब्द बोलने वाले के व्यक्ति को ही लगता था, ऐसा शब्द भेदी बाण। ऐसे हमारे राजस्थान में भी एक महान सूरवीर हुए हैं जिन्होंने, पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने खाली वो बताया था, माप बताया था और उस माप पे जो बाण छोड़ने वाले वो अंध थे। पृथ्वीराज चौहान अंधे कर दिए गए थे, राजा जो मुगल साम्राज्य था वो ऊपर बैठा था तो उसका माप बताया कि वो महल इतने चार भुज अष्टुल अंग प्रमाण था, ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान को उसके कवि ने, राजा ऊपर महल में खिड़की में बैठा था वो और चौहान अंधे थे तो उसको माप बताया कि चार हाथ और आठ अंगुल और उसके ऊपर राजा बैठा है छोड़ बाण, तो उसने माप पर अंधे आंख से छोड़ा बाण तो लग गया उसको, खाली माप बताया। ऐसे ऐसे पराक्रमी सूरवीर भारत में हुए। तो महाराज दशरथ भी बहुत निपुण थे और शब्द भेदी बाण जानते थे। तो जब श्रवण कुमार ने अपना लोटा भरने के लिए इस जल में डाला तो उस लोटे से गड़गड़ गड़गड़ गड़ आवाज आई पानी से। तो महाराज दशरथ ने सोचा कि कोई पशु पानी पीने के लिए आया है और ये सोचकर उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा और वो बाण जाकर श्रवण के हृदय में लग गया और उनसे जैसे ही आवाज निकली तो महाराज दशरथ समझ गए कि अहो ये तो कोई मानव है। तुरंत महाराज दशरथ भागकर उसके पास गए और उसके बाण को निकाला और लेकिन वो मरते मरते श्रवण ने कहा कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप जाकर ये पानी पिला दीजिए, और इतना कहकर श्रवण के प्राण निकल गए। तो महाराज दशरथ उस जल का लोटा को लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए लेकिन वे बोल नहीं रहे थे, वे बहुत दुखी थे महाराज दशरथ। किस प्रकार से क्या कहूं, लेकिन उन्होंने आहट से जान लिया, बोला कौन है, पुत्र श्रवण, पुत्र श्रवण इस प्रकार कहकर बोला नहीं, लेकिन वो बोला नहीं। उन्होंने पूछा आखिर तुम कौन हो, कौन हो, तो महाराज दशरथ को आखिर में बताना पड़ा कि मैं दुर्भाग्यशाली महाराज दशरथ हूं और भूल से आपके बेटे को तीर लग गया और उसके प्राण छूट गए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए और ये जल ग्रहण कीजिए। तो अपने इस पुत्र के वियोग में श्रवण के माता पिता दुखी हुए और दुखी होकर अपने प्राणों को त्यागने का स्थिति आ गया, अति दुख में हो गए। तो प्राण त्यागते त्यागते उन्होंने महाराज दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, इस प्रकार तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्यागोगे। हालांकि महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं था, लेकिन एक बात निश्चित होगी कि उनके श्राप के कारण अब उनके पुत्र होगा, एक बेनिफिट पॉइंट रहा। हालांकि महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, प्रातःकाल हमने उसका कथा किया, शांता नाम की एक पुत्री थी जो उन्होंने अपने मित्र रोमपाद को गोद दे दी थी और उस पुत्री का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। तो ये श्राप लगा महाराज दशरथ को, हालांकि ये एक देवी प्रेरित था और इस प्रकार महाराज दशरथ ये श्राप पर तो वो बोले कि जो भी है देव प्रेरित है, हम किसी को कोई दोष नहीं देना चाहिए। इस प्रकार महाराज दशरथ जब घर लौटे तो ये श्राप लगा हुआ था, लेकिन वास्तव में श्राप के पीछे ही उनका वास्तव में तो भगवान राम से इतना प्रेम था। तो इस प्रकार भगवान राम के प्रेम के वियोग में उन्होंने शरीर छोड़ा था। बाकी भगवान राम के राज्य में अगर कोई इच्छा ना करे तो वो उसको मृत्यु भी नहीं आता था। मृत्यु नासिद राम राज्य अधोक्षजे, भगवान राम के राज्य ऐसा भगवान राम का राज्य था जो आज के लिए कोई विचार भी नहीं कर सकता है कि राम का राज्य ऐसा है। राम का चरित्र इतना उज्जवल है, इतना उज्जवल चरित्र रहा कि आज कोई भी व्यक्ति भगवान राम के चरित्र को पसंद करता है। एक बार की घटना कि सीता जी को जब रावण ले गया और सीता जी से बार बार आग्रह करता था, लेकिन सीता जी उसकी बिल्कुल रावण की बात को सुनती तक नहीं थी, बहुत धमकाता था, बहुत प्रलोभन देता था, तुमको मंदोदरी की दासी बना दूंगा, तुमको पटरानी बनाऊंगा, तुम हमको स्वीकार कर लो, लेकिन सीता जी ने रावण को स्वीकार नहीं किया। तो रावण के मंत्रियों ने रावण को सलाह दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम तुम्हारे पास तो सब सिद्धियां हैं, तुम राम का वेश बना लो और राम का वेश बनाकर सीता के सामने जाओ तो सीता तुरंत तुमको स्वीकार कर लेगी। तो रावण ने कहा ठीक है मैं राम का वेश बना देता हूं। तो रावण लगा राम का वेश बनाने, जैसे ही वो राम का वेश बनाने लगा, कब वस्त्र ऐसे पहनने लगा, अपना चेहरा बदलने, जैसे उसके विचार भी बदलने लगे, वो सोचा कि नहीं नहीं राम तो पराई स्त्री है, इसके साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं, पराई स्त्री तो माँ के बराबर, ऐसा विचार आने लगा रावण के मन में। तो रावण ने सोचा नहीं 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 ये तो बहुत खतरनाक ड्रेस है, नहीं 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 ये ऐसा वेश मैं धारण नहीं करूंगा, ऐसा मैं वेश धारण नहीं करूंगा। तो राम का चरित्र कितना उज्ज्वल है, इतना ही राम का नाम है। राम के एक समय की घटना है कि मंदोदरी ने, हालांकि राम कथा तो आप सब जानते हैं, मंत्र में थोड़ा सा कोई कथा लेंगे, मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि तुम राम से शत्रुता छोड़, राम बहुत दयालु हैं, अगर जाकर तुम शरणागत होकर सीता को वापस दे दो तो राम तुमको क्षमा कर देंगे। और वास्तव में राम बहुत दयालु थे। प्रातःकाल के प्रसंग में हमने भागवतम का एक प्रसंग प्रस्तुत किया कि राम इतने दयालु थे, इतने दयालु थे कि रावण के मरने के बाद भी कोसलेंद्र अनुमोदित भगवान राम ने कहा कि इस रावण की अधोगति न हो, इसके लिए हे विभीषण तुम सांप्रायिक क्रियाएं करो। यदुक्त सांप्रायिकम, भगवान राम ने आग्रह करके विभीषण जी से वो सब क्रियाएं कराई जो जन्म के बाद जीव को नरक या अधोगति या भूत योग जाने को बचाने के लिए कुछ शास्त्र युक्त क्रियाएं होती हैं, हैं? वो क्रियाएं अंतिम संस्कार के बाद की जाती है, तो वे क्रियाएं भगवान राम ने कहकर करवाई। वहां पर प्रभुपाद जी ने लिखा कि भगवान राम रावण के मरने के बाद भी उसके प्रति इतने दयालु बने रहे। वास्तव में भगवान राम इतने दयालु थे। ये तो जैसे शिव जी कहते हैं उमा कहूं ते लोग अभागे, वो लोग वास्तव में अभागे हैं जो हाँ हरि तजे विषय अनुरागी, जो ऐसे प्रभु को छोड़कर ऐसे प्रभु की शरण छोड़कर संसार के विषयों में ही अनुराग रखते हैं, वास्तव में ऐसे लोग अभागे हैं। नहीं तो प्रभु राम इतने दयालु, मंदोदरी ने बहुत दयालु, तुम चले जाओ तुमको क्षमा कर देंगे, कर देते थे। जब भगवान राम ने लंका में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद जब विभीषण जी को पता चला कि भगवान राम लंका में आए हैं, हालांकि रावण को रावण ने दशरथ विभीषण को निकाल दिया था घर से, क्योंकि वो हमेशा राम के पक्ष की बात कर रहे थे, उनको समझाते थे। तो रावण ने सोचा मेरा भाई होकर राम का पक्ष लेता है, तू मेरा शत्रु है, लात मारकर निकाल दिया था। तब विभीषण जी भगवान राम से मिलने के लिए आए और जैसे ही आए तो विभीषण जी ने दंडवत प्रणाम किया राम को। दंडवत प्रणाम किया तो भगवान राम ने उनको अपने हाथ से उठाया और उठाकर गले लगाया और कहा आओ लंकेश। उस समय लंकेश तो रावण था, विभीषण तो अभी झोपड़ी में रहते थे लंका के बाद। तो ये जो सुग्रीव जामवान अंगद हनुमान जी, ये तो बहुत बड़े भगवान के स्वभाव को जानते थे, भगवान को जानते थे तत्व से, कि ये प्रभु तो बहुत दयालु हैं और ये क्या बोल रहे हैं। दयालु का अर्थ है कि अभी इसको लंकेश कह रहे हैं, मतलब लंका का राज्य इसको दे रहे हैं। अरे अभी तो रावण को परास्त भी नहीं किया है, हो सकता है कल राम का गुणगान सुन के या रावण का मति बदल जाए और कल अगर रावण आकर प्रणाम कर लिया तो ये तो क्षमा कर देंगे, तो फिर इसको लंकेश कहा इसका क्या होगा, फिर तो लंकेश लंकेश बना रहेगा, ये विभीषण कैसे लंकेश बनेंगे। वे क्यों ऐसा कह, क्योंकि वे राम के स्वभाव को जानते हैं कि राम का स्वभाव कैसा है। तब जब लंकेश कहा तो उनके भक्तों ने पूछा कि प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, आप इसको लंका का राजा घोषित कर रहे हैं और कल आकर अगर रावण ने दंडवत कर दिया तो फिर क्या होगा। तो बोले रावण ने प्रणाम कर दिया तो रावण को मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। इतने दयालु थे राम, इतने कृपालु थे राम के प्रभाव को कौन नहीं जानता। तो ऐसे प्रभु राम का आज प्रागट्य दिन है, आइए उनके प्रागट्य के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सुबह हमने दो तीन कारण उनके अवतार के पीछे दो तीन कारणों को प्रस्तुत किया था, एक कारण दो कारण बाकी थे उसको भी प्रस्तुत करके, भगवान जो अवतरित होते हैं तो उनके पीछे दो कारण मुख्य रहते हैं, अंतरंग कारण बहिर्कारण। अंतरंग कारण अपना जिसमें कुछ हेतु होता है, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, गौर निताय की जय। तो कुछ अंतरंग कारणों को प्रस्तुत किया था, जो भी नए आए हैं उनको संक्षिप्त में बता दें कि अंतरंग कारण में एक कारण था कि भगवान अपने वीर रस का स्वादन करना चाहते थे और जिसके अंतर्गत भगवान की इच्छा से चतुर कुमारों द्वारा जय विजय को श्राप मिला और जिनके कारण जय विजय को इस पृथ्वी पर तीन असुर कुलों में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इसके पीछे कारण था कि भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए ये कारण प्रस्तुत किया कि जय विजय को श्राप मिलना, वे ही हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने और दूसरे जन्म में वे ही रावण और कुंभकर्ण बने और उनके साथ युद्ध करके भगवान ने अपने वीर रस का स्वादन किया, एक कारण। दूसरा कारण प्रस्तुत किया गया था कि नारद जी ने भगवान राम भगवान विष्णु को श्राप दिया था। ये कई लोगों का जिज्ञासा हो रहा है कि हैं नारद ने क्यों श्राप दिया, यही जिज्ञासा ये कथा भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं। जैसे भागवतम की कथाएं चलती हैं ऐसे रामायण की भी कथाएं चलती हैं। भागवतम का कथा आप देखते हैं कि मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं, वही कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, वही कथा सूत गोस्वामी सौनक इत्यादि ऋषियों को सुना रहे हैं, हैं ऐसे भागवत की कथा लिंग से चलती है। ऐसे ही रामायण की भी कथा चलती है, भगवान शिव राम कथा पार्वती को सुना रहे हैं, वही राम कथा यज्ञवल्क जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं और वही राम कथा काकभूषणी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और वही राम कथा हम आपको सुना रहे हैं, ऐसा ये लिंग से प्रसंग चलता। तो शिवजी पार्वती को कथा सुना रहे थे, पार्वती का आग्रह था, बहुत सुंदर प्रसंग था, पूरा कथा प्रस्तुत किया था। तो पार्वती ने आग्रह किया था, अगर बहुत भक्तों का इच्छा है तो इसको हम फिर से प्रस्तुत करते हैं, क्या कारण था। सती पार्वती ने जिज्ञासा की शिवजी से, जब वो ये जिज्ञासा पार्वती के रूप में जब वो थी तब, इसके पहले पार्वती जी का एक और जन्म हुआ था जिसका नाम सती था और ये दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और इसके साथ भगवान शिव का विवाह हुआ था। बहुत भागवतम में प्रसिद्ध प्रसंग है कि दक्ष के साथ विवाह हुआ था और उसके बाद दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया था जिसमें भगवान शिव जी गए थे, लेकिन शिव जी ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम ना किया, इसके कारण दक्ष बहुत रंज हुए और शिव जी को भला बुरा कहा और बहुत बोलने लगे। शिव जी को यहाँ का ये नंग धड़ंग रहता है, इसका कोई कपड़ा का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, मैंने बहुत बड़ा भूल कर दिया कि इसको मेरे बेटी दे दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में, सगाई करने के बाद भी उसका अवगुण ना करते हैं। तो शिव जी तो पहले से ही ऐसे थे, जब तुमने अपनी बेटी का सगाई किया तब भी शिव जी तो ऐसे ही थे, ऐसा नहीं कि भाई शिव जी ने कहा कोई घाटा गया और दीवाला निकल गया इसलिए उनका फ्लैट चला गया, गए ऐसा तो नहीं था। शिव जी तो जब से हैं तब से ऐसे ही हैं, ना उनका कोई फ्लैट है, ना कोई उनका वस्त्र का कोई कीमती वस्त्र पहनते, ना आभूषण धारण करते हैं, ना कोई बिजनेस करते हैं, कुछ नहीं है शिव जी, वो तो परम विरक्त पुरुष हैं। लेकिन वो अपमान हुआ तो ऐसा बोलने लगा शिव जी को, और शिव जी ने प्रणाम नहीं किया तो उसको बहुत बुरा लगा। तो उसके बाद एक और यज्ञ किया शिव जी का अपमान करने के लिए। अरे ऐसे वैष्णवों का जो अपमान करते हैं उनका कैसे मंगल हो सकता है। तो शिव जी का अपमान किया था, लेकिन उस यज्ञ में सती ने अपना शरीर छोड़ा और उसके बाद दूसरे जन्म में वो पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री बनी और शिव जी का विवाह हुआ। तो अब दूसरे जन्म में उसने पार्वती के रूप में जिज्ञासा किया था कि मैंने देखी प्रभु राम प्रभुताई, हे स्वामी मैंने भगवान राम की भगवत्ता को देखा है और ये मेरी बहुत बड़ी भूल हुई थी, अति मैं विकल भई तुम्हें न सुनाई, मैं उस समय बहुत विकल हो गई थी इसलिए आपको पूरा पूरा बात बताया नहीं, तदापि मलिन मन बोध न आवा सो फलु भली भांति में पावा। ये प्रसंग बहुत बड़ा है, सुबह कई भक्त सुन चुके हैं इसलिए मैं नहीं चाहता कि सुनाना जाए विस्तार से, लेकिन संक्षिप्त में जब सती के रूप में उसने सीता जी का पिक्षा लिया था, ये प्रसंग आप सब जानते होंगे, शिव जी ने कहा कि वो भगवान राम हैं, भगवान राम जब सीता जी का हरण हुआ और उनके वियोग में रो रहे थे, पशु पंछियों से वृक्षों से पूछ रहे थे और रो रहे थे, इस प्रसंग में जो भागवतम में प्रभुपाद जी टीका लिखते हैं कि भगवान राम यहां पर एक स्त्री आसक्त पुरुष का भूमिका दिखा रहे हैं कि जो लोग इस जगत में स्त्री में बहुत आसक्त होते हैं उनकी क्या दशा होती है। तो भगवान ये राम दिखा रहे हैं कि वास्तव में पुरुष को स्त्री में बहुत आसक्त नहीं होना चाहिए। ये हमारे इस प्रसंग कई प्रसंगों में आया है कि व्यक्ति का पति को कैसा रोना चाहिए, स्त्री के साथ कितना आसक्त रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। जैसे हमारे कई आचार्यगण कहते हैं कि महाराज दशरथ, महाराज दशरथ जब केकई कोप भवन में थी और कोप भवन में गए तो केकई को, अरे प्रिया तुम क्यों इतनी उदास हो, क्या बात है, क्यों तुमने आभूषण त्याग दिए, क्यों काले वस्त्र पहने, क्या है, तुमको जो चाहिए मांग लो, क्या चाहिए हमारे लिए, तुम जो चाहिए मांग लो, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो कहोगी मैं दूंगा। कई भक्त बताते हैं कभी पति को स्त्री के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम जो मांगोगी दे दूंगा, कभी बोलना चाहिए। कितना भी आप स्त्री से प्रेम करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन स्त्री के सामने व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम जो मांगोगे दे दूंगी, नहीं तो आप संकट में पड़ सकते हैं। जब केकई जैसी पत्नी उस समय में ऐसी महाराज दशरथ को संकट में ला दिया, तो आज आप अपनी पत्नी में आसक्त होकर ऐसा कहोगे, हाँ क्या मांग रही, तो बोलते तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दो, हमारे साथ अलग सेपरेट रहो आज तुरंत। इसलिए पत्नी को ऐसा खुलकर नहीं कहना चाहिए कि आपको जो चाहिए मांग लो, लेकिन महाराज दशरथ ने कहा तो भुगतो, कहा तो फल भोगो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्री में आसक्त व्यक्ति की क्या दशा होती है वो भगवान राम दिखा रहे हैं। ये एक बाहरी प्रस्तुति की है, अंतरंग कारण ये था कि भगवान राम विप्रलभ रस का स्वादन करते हैं, विरह का, अपने प्रियतम के विरह में जो वेदना होती है और उसमें जो सुख होता है वो सुख अद्वय, वो ऐसा सुख से बढ़कर कोई, जैसे चैतन्य महाप्रभु जो राधा के भाव में कृष्ण का वियोग का अनुभव करके रात रात भर रोते रहते थे, तो उस विरह भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के वियोग में जो वो रोए हैं और उसमें जो आनंद का सुख का स्वादन होता है वो ही जान। इसी सुख का स्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बने अंतरंग कारण, भगवान के वियोग का सुख है, उनका वियोग में रोना तड़पना और उसमें जो आनंद है वो मिलन में भी नहीं। तो भगवान राम यहां सीता जी के वियोग में विप्रलभ का रसावादन कर रहे हैं और रो रहे हैं, ये अंतरंग कारण और बाहरी कारण जो प्रभुपाद जी देते हैं इस प्रकार। तो उस समय वे पशु पंछियों से पूछ रहे थे, उसी समय भगवान शिव पार्वती के सती के साथ जा रहे थे, पार्वती के साथ नहीं, सती, शिव जी ने प्रणाम किया, सती को संशय हुआ आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, बोले प्रभु राम हमारे जो इष्ट देव हैं, जो घट घट में बसने वाले राम परमात्मा वो ही राम हैं जो लीला कर रहे हैं, सती को संशय हुआ, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, नहीं मैं मानती, बहुत आदर किया लेकिन नहीं माना। आज के लोग भगवान राम को भगवान नहीं मानते कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सती जिसको जगत जननी कहा जाता है, शिव जी की अर्धांगनी है, उसको संशय हो सकता है, तो आज के जीव को संशय हो जाए क्या बड़ी बात है कि भगवान है, सारणपुर से कह सकता है व्यक्ति, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, भगवान को जानना इतना सरल नहीं है। तो इस प्रकार सती ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी, शिव जी ने कहा जाकर ले लो, ले ली परीक्षा, सीता का रूप धारण किया, भगवान के सामने गई, भगवान ने पहचान लिया, अरे माते, वो सोच रही थी कि ये तो हमसे लिपट जाएंगे और यही सीता है, सीता का रूप देखकर, लेकिन वो तो भगवान राम अंतर्यामी हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो राम अलग हैं, ये राम अलग हैं, दशरथ के पुत्र राम अलग हैं, वो ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं हमारे भारत में, वो राम अलग, ये राम अलग, घट घट में बसने वाला राम अलग और वो दशरथ पुत्र राम अलग, अरे वो ही है, इसीलिए तो वो अंतर्यामी है, जान गए कि ये तो हमारे भोलेनाथ की पत्नी है, सती है, और जान गए कि अरे माता आप अकेली भोलेनाथ इस जंगल में आप अकेली क्या कर रही है। अब वहां सती का वहां से चलना मुश्किल हो गया। ये तो भगवान ने जान लिया, ये तो भगवान है, ये ही अंतर्यामी परमात्मा है। अब वहां से किस विधि में यहां से जाऊं। हाँ, इस बात को इसने पार्वती के रूप में कहा है, अति भई विकल तुम्हें न सुनाई। मैं उस समय बहुत विकल विवल हो गई थी, इसलिए आपको ये बात नहीं बताया कि मैंने सीता का रूप धारण किया था। जब वो वापस आई, शिव जी ने पूछा हो गया परीक्षा, हाँ बोला ठीक है, आप कहते हैं भगवान है तो वो भगवान, परीक्षा लिया बोला हाँ नहीं वो भगवान है, तुमने क्या किया नहीं बताया कि मैंने सीता का रूप लिया। लेकिन शिव जी हैं वो योग के बल पर जान गए, वो भी भगवान जान गए कि इसने हमारे माता सीता का रूप इस शरीर से धारण किया। इसलिए उसके बाद भगवान कैलाश पर गए, लेकिन कभी सती को न तो सती से सेवा कराते थे, न सती को कभी गोद में बिठाया और दूर आसन पर बिठाते सेवा नहीं, क्योंकि भगवान शिव को यही भाव रहता था कि इस शरीर से इसने हमारी माता सीता का रूप धारण किया था। तो इस बात का दुख सती को हमेशा रहा कि हमारा ये जीवन हमारा शरीर हमारे स्वामी की सेवा में उपयोग नहीं हो रहा है, अब ये इस शरीर को क्या करूं। तो इसी का अवसर ढूंढ रही थी, और दक्ष प्रजापति का यज्ञ था, इसमें भगवान शिव का बहुत अपमान हुआ था, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, उनको यज्ञ में स्थान नहीं दिया गया। और जब सती के रूप में वो वहां गई बिना निमंत्रण के, शिव जी के मना करने पर भी वो गई, और वहां जाकर इसने देखा कि ये अवसर अच्छा है, ये शरीर इसी दक्ष प्रजापति से मिला है, जो शरीर अब भगवान भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तब यज्ञ पाकर अवसर पाकर ये सती ने उस यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया, जलाकर भस्म कर दिया। तो यहां कहती है, तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फलू भली भाती हम पावा। मेरे मन में वो मल आया था, भगवान राम के प्रति शंका हुआ था, उसका फल मैंने भली भांति प्राप्त कर लिया। हे प्रभु, उस प्रभु राम की मैंने प्रभुताई देखी है, आप उसके अवतार के विषय में मुझे बताइए कि उन्होंने क्यों अवतार धारण किया। तब भगवान शिव कहते हुए कहते हैं कि नारद श्राप दिना एक बार, नारद जी ने एक बार श्राप दिया था, उसके कारण भगवान राम का अवतार हुआ। ये कथा सुबह हो चुकी है, इसलिए हम इसको अब आगे नहीं बढ़ाते हैं। नारद जी एक बार, नारद जी के अंदर भी अहंकार आ गया था, जिस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान राम ने ऐसी लीला की, और उस लीला के अंतर्गत नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि मैं मेरे होने वाली पत्नी के वियोग में रो रहा हूँ, तुम भी एक दिन अपने पत्नी के वियोग में रोओगे, और तुमने हमारा मुंह बंदर का बनाया, इसलिए तुमको बंदरों की सहायता लेना पड़ेगा, उसी बंदरों का, जिस बंदर का मुंह बनाकर तुमने जगत में हमारा हंसी उड़वाया। ये श्राप दिया नारद जी ने, भगवान ने उसके श्राप को स्वीकार किया। सत्यम विधातुम निज भ्रत्य भाषितम, भगवान अपने वचन को तोड़ देते हैं लेकिन भक्तों के वचन हमेशा रखते हैं, और इसके लिए भगवान राम का अवतार हुआ, नारद जी के श्राप को सत्य। ऐसे ही भगवान के एक महान भक्त का एक और वचन जो था उसको सत्य करने के लिए इस प्रसंग को हम पूरा लेते हैं। भगवान राम के प्रागट्य के पीछे अंतरंग कारण सबरी। सबरी जिसको बताया गया कि पूर्व जन्म में वो एक राजकुमारी थी, या एक बार हमने देवकी नंदन प्रभु के मुख से सुना कि वो उसके पूर्व में एक चिपकली थी, और एक ऐसा भंडारा हो रहा था, भक्त आए थे, और वो चिपकली ने देखा कि जो खीर बन रहा था उस खीर में विष पड़ गया था, कि सांप ने मुंह डाल दिया कि क्या विष फेंक दिया। वो चिपकली ने देख लिया, और तो चिपकली देखा, और वो चिपकली ऊपर से उस गरम गरम खीर में गिरी, और गिरने के कारण वो मर गई और फूल कर बड़ी हो गई, जिसके कारण उस खीर को सबने फेंक दिया। तो उस खीर को फेंकने के कारण इतने महात्माओं के प्राण बच गए। तो इस अज्ञात सुकृति उसको प्राप्त हुआ, और जिसके कारण हो सकता है कि उसका जन्म दूसरा जन्म एक राजकुमारी के रूप में हुआ, तो वो राजकुमारी उज्जैन की राजकुमारी प्रभु जी गोपाल, वो दूसरा देश लिखा गया है, तो वहां राजकुमारी थी, लेकिन क्योंकि उस पर वैष्णवों की कृपा थी, अज्ञात सुकृति प्राप्त थी, इसलिए उसकी इच्छा हमेशा राजकुमारी होने के बाद भी संतों की सेवा करने में उसकी बहुत रुचि थी। वास्तव में ये भगवान की कृपा होती है, ये किसी वैष्णवों की कृपा से ही वैष्णवों की सेवा मिलती है ना। भगवान की सेवा या भगवान के भक्तों की सेवा, इसमें भक्तों का ही कृपा से ही प्राप्त होती है महत्व सेवा। तो उसकी बहुत इच्छा रहती थी कि वो भगवान के भक्तों की सेवा करे, लेकिन राजकुमारी, पहले के समय के राजा थे और उनकी राजकुमारी, कोई भी बहुत बड़ा धनी है व्यक्ति या ऊंचा पद है या डिग्री है, तो वो वास्तव में संतों की सेवा नहीं कर सकते। ये कुछ संसार की ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ पद प्रतिष्ठा नाम या उच्च कुल में जन्म, ये वास्तव में भगवान की भक्ति में बाधक हैं। जो इस संसार के संसार में जिन विषयों को ऊंचा माना गया है, आध्यात्मिक विषय में उन विषयों को बिल्कुल निम्न माना गया है। कुंती महारानी प्रार्थना करती हुई कहती है कि दुर्भाग्य के कारण जिनको धन मिला है, भागवत के कुंती महारानी की प्रार्थना बहुत अद्भुत है, भागवत में बहुत अद्भुत प्रार्थना है कि दुर्भाग्य के कारण जिनको धन मिला है, दुर्भाग्य के कारण जिनको ऊंचा पद मिला है, दुर्भाग्य के कारण जिनको उच्च कुल में जन्म मिला है, या दुर्भाग्य के कारण जिनको बहुत बड़ा डिग्री मिल गया है, ये सब वस्तुएं दुर्भाग्य। क्यों? क्योंकि ये डिग्रियां जिनके पास है, ये भौतिक उपाधि जिनके पास है, वो प्रभु आपको नहीं जान सकता। साधारण व्यक्ति आकर भगवान को इधर दंडवत कर लेगा या मंदिर में झाड़ू पोता कर देगा, लेकिन समझो कलेक्टर का लड़का आ गया, लड़की आ गई, तो वो तो दंडवत करेगी, वो दंडवत नहीं, भगवान के सामने दंडवत। या स्त्री टाइट व्यक्ति है या बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो भी, हाँ ऐसा, ये प्रभुपाद महाराज की ऐसी कृपा रही कि ऐसे लोगों को भी भक्त बना दिया। ये प्रभुपाद का पवित्रता देखिए। उनकी महारानी कहती है कि ऐसे लोग होते हैं वे भक्त नहीं, उनको भगवान को जानने में बहुत ये सब उपाधियां बाधक बनती हैं, लेकिन किसी संत की कृपा से संभव हो सकता है। तो प्रभुपाद की ऐसी कृपा रही कि प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं आप देख लीजिए, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, बहुत धन है, और ऐसे ऐसे गिरिराज महाराज जो हैं वो न्यूयॉर्क के मेयर के एक ही लड़के, कितना बड़ा ध्यानी व्यक्ति। अरे मीरा भाईंदर का मेयर है और उसका लड़का है तो वो तो आसमान में चलता है। ये न्यूयॉर्क, इस विश्व का जो सबसे बड़ा सिटी है न्यूयॉर्क, उनके मेयर और उनके एक ही लड़के गिरिराज महाराज प्रभुपाद जी की दिशा से, क्या कमी थी, ऐसे को प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया है। अल्बर्ट फॉर्ड, फॉर्ड कंपनी के मालिक, जिनका पूरे विश्व में, ये फॉर्ड ऑटोमोबाइल कंपनी पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है फॉर्ड, उसके मालिक अल्बर्ट फॉर्ड, उनको प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। प्रभुपाद जी का भी ये एक ऐसा, कई भक्तों ने कहा कि इस शताब्दी का ऐसा वैष्णव मुश्किल है, असंभव। एक भक्त ने प्रभुपाद जी का बराबरी जटायु जी से किया, एक भक्त ने प्रभुपाद जी का बराबरी हनुमान जी से किया। ये रामायण के प्रसंग में एक भक्त लिखते हैं कि प्रभुपाद जी भी हनुमान जी जैसे हैं। हनुमान जी निशाचरों की नगरी में गए, लंका जो राक्षसों की नगरी है, जहां चार प्रकार के पाप होते हैं, मांसाहार शराब व्यभिचार, ये सब लंका में होता था, और ऐसी नगरी में हनुमान जी गए सीता की खोज करने के लिए। प्रभुपाद जी भी अमेरिका जैसे देशों में गए, जो निशाचरों की नगरी है, चार प्रकार के पाप प्रचुर मात्रा में होते हैं, और वहां गए कृष्ण के भक्तों का को ढूंढने के लिए कि वहां कौन कौन भक्त है, और ढूंढ निकाला। हनुमान जी ने नीचासुरों की नगरी में जैसे सीता को ढूंढ निकाला, प्रभुपाद जी ने ऐसे देशों में जाकर, ऐसे पापी देशों में जाकर ऐसे भक्तों को निकाला, ऐसे प्रभुपाद जी। ये राम की पूरी सेना में ये असंभव कार्य लग रहा था कि रावण लंका में रावण की अनुमति के बिना एक मच्छर भी अंदर नहीं प्रवेश कर सकता, ऐसी सिक्योरिटी टाइट था। प्रभुपाद जी के लिए भी ऐसा था कि प्रभुपाद जी आप अमेरिका जाकर एक व्यक्ति को भी भक्त नहीं बना सकते, हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव है, लेकिन प्रभुपाद जी ने किया। एक भक्त, वही भक्त प्रभुपाद जी की तुलना जटायु से करते हैं कि जटायु जब रावण से सीता जी को बचाने के लिए रावण से लड़ रहे थे तो जटायु बहुत वृद्ध, उनकी आयु बहुत वृद्ध हो चुकी थी और रावण बहुत शक्तिशाली था, देवताओं को प्रास करने की शक्ति रावण ने थी, इंद्र इत्यादि देवों को तो बांध के रख दिया था, देवता रावण की सेवा करते थे। और ऐसा शक्तिशाली रावण और उसके साथ जटायु ने युद्ध मोल लेना, क्या करेगा वो जटायु, क्या कर सकते हैं रावण को, क्या मार सकते हैं, ये असंभव कार्य था। वो वृद्ध भी थे और कार्य भी असंभव था, लेकिन जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया, प्रयास किया। क्यों प्रयास किया? सीता जी को रावण की प्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने प्रयास किया, असंभव कार्य था, संभव नहीं था। कई हमारे वैष्णव उसके पहले प्रभुपाद जी के गुरु भाई भी विदेशों में जाकर आए और उन्होंने भी अपना मंतव्य दिया, असंभव। ये चैतन्य महाप्रभु ने भाव वेश आकर ये कह दिया कि नगर आचरित पृथ्वी आदित गाम सर्वत्र, ये चैतन्य महाप्रभु भाव वेश में आ गए, संभव नहीं है। वहां शंख बजाते हैं तो पुलिस केस हो जाता है, ऐसे देशों में क्या प्रचार हो सकता है। ऐसे देश, ऐसे मैंने एक बार सुना कि आरती लेकर गए तो उसने सिगरेट निकालकर आरती से सिगरेट छलका दिया। ऐसे विदेश में ऐसे लोगों को भक्ति देना असंभव कार्य था। और प्रभुपाद जी वृद्ध भी थे, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि प्रभुपाद जी ये संभव कार्य है, और था भी नहीं। जैसे रावण के साथ युद्ध करके सीता जी का रक्षा करना ये असंभव कार्य था, लेकिन जटायु जी ने प्रयास किया, ऐसे ही प्रभुपाद जी के लिए वहां के लोगों के ऐसे रावण की जैसी आसुर प्रवृत्तियों से बचाना, कलयुग के प्रभाव से बचाना, चार पापों से बचाना, ये असंभव कार्य था, लेकिन प्रभुपाद जी ने चेष्टा किया, सफल हुए। तो प्रभुपाद जी का बराबरी तुलना जटायु से की गई है, कहीं कहीं प्रभुपाद जी का बराबरी नारद जी से कहा जाता है। जैसे नारद जी का देखिए, जो प्रचार करते हैं तो कहीं भी जाते हैं, बड़े बड़े राजा हैं वे भी नारद जी को स्वीकार करते हैं, नारद जी की बात को मानते हैं, और नारद जी ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी भक्त बनाया, और मृगहरी और वालिया जैसे लुटारों को भी भक्त बनाया। तो प्रभुपाद जी का भी चरित्र ऐसा है, प्रभुपाद जी की भी ऐसी लीलाएं हैं। अल्बर्ट फॉर्ड और गिरिराज महाराज जैसे बड़े बड़े राजा, ये अल्बर्ट की पदवी राजा सी है, वो अमेरिका के राजा जैसे हैं, तो उनको भी भक्त बनाया, और हिप्पियों को भी भक्त बनाया, कसाईयों को भी भक्त बनाया। तो प्रभुपाद जी का प्रचार पद भी नारद जी जैसे, ये नारद जी जैसे प्रचार। तो खैर, ये प्रभुपाद जी का वर्णन, तो ये सबरी का वर्णन कर रहे थे हम। तो मैं कह रहा था कि भौतिक जो उपाधियां हैं ये बाधक हैं भगवान की भक्ति में। तो ये जो राजकुमारी थी, ये सेवा करना चाहती थी, लेकिन राजमहल में रहना, राजकुमारियों को बाहर आना, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती। एक समय की घटना की पूरा परिवार प्रयाग में तीर्थ करने के लिए गया और प्रयाग में डूब लगाई, इस समय उस राजकुमारी ने भी डूबकी लगाई और भगवान से ऐसी प्रार्थना की कि अब ये जीवन छूट जाए और दूसरा ऐसा जीवन निम्न कुल में दो कि भगवान की सेवा करने में कोई बाधा ही ना आए। ये बहुत ऊंचा कुल में जन्म, बहुत धन, बहुत पद प्रतिष्ठा, ये सब भगवान की सेवा में बाधक हैं, इसलिए मुझको ऐसा बिल्कुल निम्न कुल में जन्म दे। और ऐसी इच्छा करते हुए उस प्रयाग में उसने अपना शरीर यम यम वापी स्मरण भावम सज्जन्ते कलेवरम। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसको दूसरा जन्म बिल्कुल सबर कुल में हुआ, निम्न कुल जो सुअरों का पालन करता है। हमको एक बार विचार हुआ कि ये सबर कुल के साथ भगवान का कुछ घनिष्ठता है। भगवान जगन्नाथ जी की लीला देखते हैं तो उनका भी सबर कुल में, हाँ जो भगवान जगन्नाथ जी के पुजारी हैं वे भी सबर कुल से आए हुए। वो विद्यापति गए थे भगवान का ढूंढने के लिए, तो वो जो रहे थे सबर, क्या नाम उनका, वे भी सबर थे, सबर जाति के थे, हैं क्या जिस नहीं उनका सबर थे, क्या नाम था उनका, नहीं नहीं जो ना इनकी नील माधव की सेवा करते थे, जिनकी ललिता से शादी इनकी से बेटी थी, वो सबर, हाँ विश्व वसु थे, उनका नाम क्या था उसमें, विश्व नहीं विद्यापति तो जो गए वो थे, इंद्रद्युम्न महाराज के दूत जो बनकर गए वो विद्यापति थे, लेकिन ये तो सबर जाति के जो थे। आज भी उनका वंशज जगन्नाथ जी की सेवा करता है जो, और वो नील माधव के सेवक है, हैं विश्व वसु उनका उस समय नाम विश्व वसु था, हाँ तो वो तो ये भी सबर जाति के थे। और यहाँ सबरी भी सबर जाति में जन्म ली, ये निम्न जाति वनवासी जाति मानी जाती है और सूरों को पालन करती है, तो इस कुल में इसको जन्म मिला। लेकिन वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो भक्ति जो है ना ही अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमश्य धर्मश्य त्रायते महतो भया। भक्ति जो ये है ये अमोघ होती है। भक्ति आप थोड़ा भी इस जन्म में किए हैं या इच्छा भी किए हैं भक्ति करने का, तो ये आपको दूसरे जन्म में मिलेगी ही मिलेगी, हैं? दूसरा इस जन्म में आपका जो भी बैंक बैलेंस है, पुत्र है, पत्नी है, वो कहते हैं सात जन्म तक साथ रहेंगे, ये सब फ्रॉडबाजी है। इस जन्म में भी मुश्किल हो जाता है, सात जन्म का बात कहाँ आता है। लेकिन इस जन्म का आप ये जन्म छूटते ही सब छूट जाता है। आपको दूसरा जन्म मिला और फिर बोलेंगे कि ये बैंक में मेरा इतना पैसा पड़ेगा, लात मार के भगाएगा वॉचमैन। लेकिन भक्ति ये अमोघ है, ये आपके साथ रहेगी, इसलिए हमारा वास्तविक धन भक्ति है। तो ये सबर कुल में जन्म ली लेकिन इसकी भक्ति पूर्व जन्म में थी। जब बड़ी हुई तो उसका विवाह का तैयारी होने लगा। बारात आने वाली है और इसके लिए वो तो सबर जाती है, तो उसके घर में कई पशु लाए गए। तो उसने पूछा कि ये पशु आज क्यों लाए गए हैं। बोले तुम्हारी बारात आने वाली है, उस बारात में बरातियों को खिलाने के लिए। इतना सुनते ही उसका हृदय द्रवीभूत हो गया। भक्त जो होते हैं दूसरों के प्रति अति दयालु होते हैं और अकारण दयालु होते हैं। वास्तव में दूसरों का दुख देखकर अगर हमारा हृदय द्रवीभूत नहीं होता है तो हम भक्त नहीं हैं। प्रभुपाद जी को इतना कष्ट उठाकर जाने की क्या आवश्यकता, वैष्णव शुद्ध वैष्णव। तो इस प्रकार उनका हृदय द्रवीभूत, हमारी शादी के लिए इतने जीवों की हत्या, अब क्या करूं। विचार करने लगी ये शादी ऐसी नहीं करनी चाहिए और अवसर पाकर रात्रि में वो घर छोड़कर भाग गए। ये भागना ऐसा नहीं समझना चाहिए आज के जैसा लड़कियां भाग जाती, वो भागना नहीं है, है? ये बहुत उच्च वस्तु को प्राप्त। वो घर से गई और जाते 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 जंगल में बहुत दूर चली गई, क्योंकि वन में तो रहते ही थे। उसने एक वृक्ष पर अपना आसन बनाया और वहां रहने लगी, और उसी के निकट में ही एक ऋषि का आश्रम था। तो वो भोर में उठी और गई, जाते जाते देखा कि एक कुटिया है और उसमें एक ऋषि बैठे हुए हैं और वे ऋषि भगवान का भजन में मस्त हैं। तो उसने जाकर उस कुटिया को बुहारा, जल का एक घड़ा लाकर भरकर रखा और कुछ फल लाकर वहां रखे और इस प्रकार सेवा करके वहां से चले गए। जब वे ऋषि उठे और देखा तो कौन सेवा किया है, कोई सेवा करके पहले भक्तों कर। ऐसा ही दूसरे दिन भी वो अपने भजन में बैठे हुए थे, वो भोर में आई, इस बार कुटिया को बुहारा और कुछ फल लाकर रखे, कुछ फूल लाकर रखे और इस प्रकार सेवा करके चली। जैसे चैतन्य महाप्रभु की सेवा वो दुखी करती थी, चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब इसका नाम सुखी कर लो। इस प्रकार कोई कोई भक्त लोग हम सेवा करते हैं तो दिखना चाहिए हमारा सेवा के हम सेवा कर रहे हैं, कोई नहीं देखता है तो फिर सो जाता है, अब कौन देख रहा है सेवा करने से क्या फायदा। तो इस प्रकार रोज वो आके सेवा करके चली जाती थी। वो जो ऋषि से वो आश्चर्यचकित होगी कौन है जो रोज सेवा करके जाता है, इस प्रकार देखना चाहिए। तो एक दिन वो देखने के लिए थोड़ा समय से पहले उठ गए और देखा तो वो बालिका आकर सेवा करती है। जय श्री श्री राधा धारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, गौर निताय की जय। हरे कृष्ण। तो मातंग ऋषि थे, उनका नाम मातंग ऋषि था। उन्होंने देखा, उसको बिठाया, पूछा, उन्होंने सब बताया और विनती किया कि मेरी कई वर्षों से कई जन्मों से इच्छा है कि मैं किसी संत की सेवा करूं। तो मातंग ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उनको कहा तुम सेवा कर सकती हो। तो वो मातंग ऋषि की सेवा करने लगी। हालांकि इसके लिए कई दूसरे जो वहां संत थे वो बहुत विरोध किए और ये लड़की को रखता है, शूद्र कुल की है, और पंपा सरोवर में जाते थे तो स्नान करने नहीं देते थे और बहुत विरोध करते थे। कई ऐसे भी उस समय वो साधु थे जो उनका विरोध करते थे। इसलिए भगवान राम को जब वनवास हुआ, उसमें भगवान राम जब वनवास से जा रहे थे तो कई साधु संतों के आश्रम में जाते थे। और जब सबरी के आश्रम के निकट पहुंचने वाले थे, मातंग ऋषि के आश्रम के निकट, तो कई साधु आकर कहते थे प्रभु हमारे आश्रम में आइए। वो ऐसे साधु जब पूछते थे जो सबरी का विरोध करते थे कि ये साधु है और युवान लड़की रखा है, ये तो शूद्र है और ये अस्पृश है, तो भगवान राम जब ऐसे साधु आकर विनती करते थे तो उनसे पूछते थे ये सबरी का आश्रम कहाँ है। वो कहते थे हमारे कुटिया में आओ प्रभु, आपके चरण रखो। तो प्रभु पूछते थे सबरी का आश्रम कहाँ है। देखिए ये शिक्षाप्रद बात है, भगवान अपने प्रेमी भक्तों से प्रसन्न होते, किसी जाति पाति से प्रसन्न नहीं होते हैं। जाति पाति या भौतिक कोई भी हमारे पास सामर्थ्य है उससे भगवान प्रसन्न नहीं, भगवान मात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और जो भक्तों के ऐसे भक्त जिनका कोई निंदा करे या जिनका कुल देखे, वास्तव में रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं कि वास्तव में भक्त को किसी वैष्णव का या भक्त का कुल या भौतिक चरित्र नहीं देखना चाहिए, उसका शरीर का रंग ढंग नहीं देखना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं करना चाहिए कि ये तो लूला है या लंगड़ा है या तो गरीब है या ये तो फटे वस्त्र पहनता है। साधु का कुल और नदी का मूल मूर्ख व्यक्ति पूछते हैं, भक्त का भक्ति को देखना चाहिए। सबसे बड़ा गुण है भक्ति, बाकी निम्न गुण है। भगवान ने तो यहां तक कहा है गीता में अपि चेत दुराचारो भजते माम अन्य भाक साधुर एव मन्यते, तुम उसको साधु ही मान। अगर उसमें कुछ अपिचेत दुराचार, कुछ दूर आचरण भी है, उसमें कुछ गड़बड़ भी है, तो तू उसको साधु मान। अगर वो मेरा भक्त है तो, मेरी भक्ति कर रहा है तो, अगर मेरी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है तो उसको साधु ही समझना चाहिए। तो ये तो अनन्य भक्ति में लगी हुई है और उसको बोलते हैं ये तो शुगुल की है और ये मातंग ऋषि ने रखा, इसका विरोध होता था, स्नान करने नहीं देते थे, उस पंपा सरोवर पर जाने नहीं देते थे, विरोध होता था। ऐसे साधु जब भगवान राम जा रहे थे तो उससे पीछे प्रभु हमारी कुटिया में भी आओ, तो भगवान पूछते सबरी का आश्रम कहाँ है, तब उनकी बैटरी चार्जिंग होती थी। ओ बाप रे, भगवान सबरी के आश्रम का पता पूछ रहे हैं, हालांकि वो तो जानते हैं कि कहाँ है, लेकिन जानबूझकर पूछ रहे हैं उनका बैटरी चार्ज करने के लिए। वो सबरी वहां सेवा करने लगी, मातंग ऋषि का बहुत सेवा किया। सेवा करते करते मातंग ऋषि ने एक दिन कहा कि बेटी अब मैं शरीर छोड़कर जाना चाहूं। ये वचन सुनकर सबरी का हृदय बहुत कांप गया, भयभीत हो गई कि हे गुरुवर, आप चले जाएंगे, आप तो भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन मैं भगवत प्राप्ति मेरा कैसे होगा, मैं आपकी सेवा से वंचित हो जाऊंगी, और प्रभु भजन कैसे होगा, हमको भगवत प्राप्ति कैसे होगा, मैं तो शूद्र कुल में जन्मी हूँ, निम्न हूँ, हमारे में भक्ति नहीं है। इस प्रकार विह्वल होकर मातंग ऋषि के सामने रोने लगी। जैसे हम लोग संसार के विषयों के लिए रोते हैं, धन कब मिलेगा, पद कब मिलेगा, हमारा बिजनेस अच्छा कब चलेगा, इसके लिए जैसे हम भगवान के सामने रोते हैं, ये सबरी भगवत प्राप्ति के लिए रोने लगी, या उनकी सेवा से वंचित हो रही इसके लिए रोने लगी। और उसका ये भाव, इसका भगवान के प्रति प्रेम देखकर मातंग ऋषि भी पिघल गए, गदगद हो गए, और गदगद होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया सबरी को कि जिन प्रभु को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जंगल में हैं, जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्मो जन्म तक जतन करते हैं, त्याग देते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, संसार के छूखों को और राजपाट त्याग देते हैं, फिर भी वे प्रभु उनको दुर्लभ हो जाते हैं, वे प्रभु एक दिन तुम्हारी भक्ति के कारण यहां तुमको दर्शन देने के लिए आएंगे। ये मातंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया। यश प्रसादा भगवत प्रसादो, यश प्रसादा न गति कुतोपी। यश प्रसादा, अगर गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है, तो भगवान क्यों नहीं मिल सकते। गुरु की कृपा मिलना जरूरी है, भगवान मिलना दूर नहीं है, गुरु की कृपा अब दूर है। तो उन्होंने गुरु को प्रसन्न कर लिया था, और प्रसन्न होकर मातंग ऋषि ने जब यह आशीर्वाद दिया, तो इस मातंग ऋषि के वचन को सत्य करने के लिए भगवान को अवतार लेकर वनवास में भ्रमण करते करते ढूंढते ढूंढते सबरी के मातंग ऋषि के आश्रम तक जाना पड़ा। कहा गया है कि अरे ऐसी भक्ति करें कि हम क्या भगवान ढूंढते हुए आए कि वो प्रभु जी का घर कहां है। ऐसी भक्ति, इसको प्रेम भक्ति कहते हैं। भगवान एक स्थान पर कहते हैं कि वो भक्त क्या जो हमारी सेवा करे, भक्त तो वो है जो हमसे सेवा करा ले। कराते हैं ना भगवान सेवा करते हैं कि नहीं, अरे रथ को हाँकते हैं, पांडवों को रात्रि भर पहरा देते हैं। तो इस प्रकार ये सबरी का भक्ति और मातंग ऋषि का आशीर्वाद, जिसके कारण भगवान को अवतार लेकर ये लीला किया, ये एक अंतरंग कारण बताया हमने। अब भगवान के प्राकट्य का समय तो गया, 12 बजे हैं। भगवान का प्राकट्य वैसे महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ जी को जाकर आग्रह किया पुत्र प्राप्ति के लिए, और इसके लिए पहले उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करते समय भी उनके क्या नाम था, सारथी, उन्होंने बताया कि अगर ऋषि श्रृंग आकर यज्ञ कराएं, पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराएं, तो महाराज आप निश्चित पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। तब उन्होंने मातंग ऋषि को बुलाया। वैसे मातंग ऋषि महाराज दशरथ के जमाई लगते थे, हालांकि रोमपाद की पुत्री गोद दे दी गई थी, लेकिन उसी को ब्याहया गया था, रोमपाद को, रोमपाद की पुत्री को। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कथा है, क्यों ब्याहया गया वो कथा है। तो इस प्रकार ऋषि श्रृंग को बुलाकर प्रसन्न करके पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए प्रसन्न किया, और पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, नीलांबर वर्णधारी हाथ में एक स्वर्ण पात्र लेकर यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। प्रकट होकर महाराज दशरथ से कहा, तुम्हारे यज्ञ से हम संतुष्ट हैं और हम आपके लिए प्रसाद लाए हैं, आप अपनी रानियों को खिलाइए, निश्चित आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उस समय पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि उस समय कौशल्या और केकई वहां उपस्थित थी। महाराज दशरथ ने उस खीर को कौशल्या और केकई को दे दिया आधा आधा। लेकिन उसी समय सुमित्रा भी दौड़कर आई और सुमित्रा ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा प्रकट की। तब कौशल्या ने अपना आधा भाग और केकई ने अपना आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। तो इस प्रकार चारों तीनों रानियों को यह यज्ञ का प्रसाद मिला और जिसके कारण वे गर्भवती हुई। और समय आते ऐसा लिखा गया है कि एक साल बाद माता कौशल्या ने आज के दिन नवमी तिथि मध्याह्न 12 बजे अभिजीत मुहूर्त और सभी ग्रह जब शुभ स्थिति में थे उस समय सभी उपनिषदों के प्रतिपाद और सनातन प्रभु सृष्टि के पालक संहार और पालन सर्जन के कर्ता हर्ता भक्तों के वत्सल प्रभु श्री राम मध्याह्न के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो लिखा गया है कि चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। विश्व रूप का भी कौशल्या को दर्शन कराया। कौशल्या जी ने भगवान की नाभि में ब्रह्मा और शिव को देखा। लेकिन कौशल्या ने कहा, प्रभु आप हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं तो इस रूप को छोड़िए और हमारे वात्सल्य प्रेम को बढ़ाइए। इस आग्रह को सुनकर भगवान राम उस रूप को छोड़ दिया। एक बार एक भक्त अपना भाव प्रकट कर रहे थे कि भगवान राम ने जब वो रूप छोड़ा, चतुर्भुज रूप छोड़ दिया, लेकिन फिर भी बड़े के बड़े बने रहे और हंसने लगे। तो कौशल्या ने कहा कि जब पुत्र जन्म लेता है तो इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, माँ की गोद में आ जाए इतना, तो आप छोटा बन जाइए। तो भगवान थोड़ा अपना कद छोटा कर दिया तो बोला, इतना नहीं तो कितना और छोटा कीजिए, तो बैठ गए। बोला, जन्म लेता है वो शिशु बैठ नहीं पाता है, वो तो बैठने की भी शक्ति नहीं होती है, तो खाली हमारी गोद में बैठ रह सको इतना। तो भगवान राम उनकी गोद में आ गए और इतना अच्छा छोटा हो गए और हंसने लगे कि जिस सारे जगत को मैं नचाता हूं, हमारे भक्त हमको नचाते हैं। तो सोचने लगे, हंसने लगे। तो कौशल्या ने कहा, अरे पुत्र का जब जन्म है तो वो हंसता नहीं, रोता है, रो। भक्त वत्सल प्रभु जो हैं तो अपने भक्तों के कहने पर रोने लगे। पूरे महल में पता चल गया कि ही कौशल्या के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चारों तरफ खुशहाली छा गई। आसमान से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। गंधर्व गाने लगे हैं और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पुष्प वर्षा होने लगी। चारों तरफ प्रकृति बिल्कुल सुमंगल हो गई। वायु मंद मंद और शीतल बहने लगी। नदियों का जल जो है शीतल कल 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 बहने लगा और चारों तरफ नक्षत्र शुभ हैं, ग्रह शुभ हैं। और ऐसे में भगवान राम का जब प्रागट्य हुआ और उसके कुछ ही समय बाद, थोड़े समय बाद केकई ने भरत को जन्म दिया। भरत जो है पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान के शंख के अंश अवतार। तो भरत केकई के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उसके दो दिन बाद, मैं ये पद्म पुराण से, अन्य अन्य पुराणों में अलग अलग कुछ घटनाओं का वर्णन है, उसमें अलग अलग कल्पों का भी वर्णन है, तो हो सकता है ये एक कल्प का वर्णन यहां हो रहा है। तो दो दिन बाद, नहीं, ये वाल्मीकि रामायण में भी लिखा गया है कि दो दिन बाद भगवान राम के प्रकट होने के दो दिन बाद सुमित्रा ने दो जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है। और पद्म पुराण कहती है कि सुमित्रा ने जो दो पुत्रों को जन्म दिया तो जो लक्ष्मण हैं वे अनंत शेष के अवतार और जो शत्रुघ्न हैं वे भगवान के सुदर्शन के अवतार। ये भागवतम में अंसा अंसे न चतुर्धागार, भगवान ये चारों जो पुत्र के रूप में प्रकट हुए चारों विष्णु तत्व हैं। ये किस किस प्रकार विष्णु तत्व हैं? तो भगवान राम जो है स्वयं विष्णु हैं, भरत जो हैं ये उनके शंख के अवतार हैं, शत्रुघ्न उनके सुदर्शन के अंश के अवतार के रूप में, और लक्ष्मण जी उनके अनंत शेष के अवतार के रूप में ये चारों विष्णु तत्व महाराज दशरथ के घर प्रकट हुए। अंशा अंशे न, तो ये अंश चारों रूपा जी लिखते हैं कि ये चारों विष्णु तत्व हैं। जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक, दूसरा से तीसरा दीपक जलाया जाता है तो सब दीपक समान है, इस प्रकार ये चारों पुत्र विष्णु तत्व हैं और समान शक्ति वाले हैं। जैसे मैंने सुबह बताया था कि भगवान के दो प्रकार के अंश होते हैं, एक स्व अंश और एक विभिन्न अंश। विभिन्न अंश जो है वो जीव है, हम लोग भगवान के विभिन्न अंश हैं। स्व अंश है जो उनके अवतार होते हैं, अवतार के रूप में वे अपना विस्तार करते हैं, ये स्व अंश होते हैं। स्व अंश जो होते हैं उनमें भगवान के जितना ही समकक्ष शक्ति होता है, विभिन्न अंश होते हैं उनमें अणुमात्र शक्ति होता है। विभिन्न अंश है जो भगवान की तटस्था शक्ति के विस्तार है, स्व अंश है भगवान के स्वयं विस्तार है। तो इधर ये चारों जो पुत्र हैं राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये भगवान विष्णु के अंशांश के रूप में प्रकट हुए। आज के दिन नवमी तिथि मधुमास पुनीता, ये नवमी तिथि भी बहुत अद्भुत है, इसकी व्याख्या प्रातः काल हुई थी। नवमी तिथि एक विशेष तिथि है, पूर्ण मानी गई है, इसका गुणाकार और गुणाकार के फल का योग एक ही बनता है। जैसे 9 से 1 का गुणाकार 9 तो उसका योग करो तो भी 9, 9 से 2 का योग करो, ये तिथि है, इसके बाद थोड़ा कीर्तन होगा। इस प्रकार ये नवमी तिथि की पूर्णता है, इसके दिन भगवान राम आज प्रकट हुए। अब भक्तों की इच्छा है कि थोड़ा कीर्तन किया जाए राम का, तो हमारे पवनदास प्रभु कीर्तन करेंगे और आप भी इस कीर्तन में भाग लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ जी के प्यारे राम, दशरथ जी के प्यारे राम, कौशल्या के दुलारे राम, अल्लाह के दुलारे राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दशरथ जी के प्यारे राम दशरथ जी के प्यारे राम कौशल्या के दुलारे राम कौशल्या के दुलारे राम श्री राम जय राम जय जय राम गाइए सब ताली बजाइए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे अयोध्यावासीरा दशरथ नंदन राम अयोध्यावासीरा दशरथ नंदन राम पतित पावन राम 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 पतित पावन राम मोहन राम जानकी जीवन राम सीता मोहन राम जानकी जीवन राम 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 पतित पावन राम सीता मोहन जानकी जीवन जानकी वल्लभ राम जानकी वल्लभ राम पतित पावन रघुपति राघव सीता मोहन राम पति राघव राम पतित पावन राम रघुपति राघव पतित पावन सीता मोहन राम पतित पावन सीता मोहन राम 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 राम, राम। पतित पावन सीता मोहन जानकी वल्लभ राम पतित पावन सीता मोहन जानकी वल्लभ राम 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 अयोध्यावासी जानकी जीवन सीता मोहन राम 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 सीता मोहन राम जानकी जीवन सीता मोहन जानकी वल्लभ राम 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 सीता मोहन राम दशरथ नंदन पतित पावन जानकी जीवन राम 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 रघुपति राघव राम रघुपति राघव दशरथ नंदन सीता मोहन राम 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 पतित पावन राम सीताराम 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 जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, राम नवमी महामहोत्सव की, राम अवतार महामहोत्सव की, राम नवमी तिथि की, सब वेद भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।